జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారీ. యశోదానందన బ్రజ జనరంజన యమున తీరావనచారే విజయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వసది గౌర్ భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ నిత గౌరవ హరివ 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 జయ రాధా రస్వి హరి రాధా శ్రీ హరి రాధే జయ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమాన్ సీత లక్ష్మణ హనుమాన్ జయ జయ గురుదేవ 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 జయ ప్రభుపద జయ ప్రభుపద ప్రభుపద జయ ప్రభుపద హరినామ సంకీర్తన కీ జయం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజ కచార్య అష్టోత్తర సహస్ర శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద్ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద కీ నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ కీ ప్రేమ సే కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తి వృందికి శ్రీ శ్రీ రాధా కృష్ణ గోప గోపీనాథ్ శ్యామ్ కుంద్ రాధా కుంద్ గిరి గోవర్ధన్ కీ బ్రజభూమి శ్రీ వృందావన్ ధామ్ కీ శ్రీ నవదీప్ మాయాపుర ధామ్ కీ శ్రీ గంగా జమునా మహారాణి కీ శ్రీమతి భక్తి దేవి కీ శ్రీమతి తులసీ దేవి కీ హరినామ సంకీర్తన్ కీ పితాయు గౌర హరి ప్రేమనందే ఆల్ గ్లోరీస్ టు శంబుల్ డివోట్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శంబుల్ డివోట్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు గురు గౌరాంగ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనిశలాకయా చక్షూరున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః వందేహం శ్రీ గురవే శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరతుసే నమః శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం జయన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం ఆదదానస్త్రిణందంత ఇదం యాసే పునః పునః శ్రీమద్రూప పదాంభోజౌ ధులిస్యాజన్మ జన్మని తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుత దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलान्धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्ते भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्नयन वंशा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंद सोलहवां अध्याय श्लोक संख्या पांच श्लोक संख्या पांच छह यस्मिन् एवा वर्षाणि नवयोजन सहस्रयाम् अन्यष्टभिर् मर्यादा गिरिभिः सुवे भक्तानि भवन्ति यस्मिन् वर्षाणि नवयोजन सहस्रयाम अष्टानभिर् मर्यादा गिरिभिः स्वीभक्तानि भवन्ति। ये छंद में नहीं है, ये गद्य है। यस्मिन् उस जम्बुद्वीप में नव वर्षाणि भूमंडल वर्ष अत तव योजन सहस्रशः नव योजन सहस्रशः 9,000 योजन अर्थात बहत्तर मील लंबा 7,200 आयामानी माप वाला आयाम का अष्टभिः 8 मर्यादा सीमा सूचक गिरिभिः पर्वतों के द्वारा सभी भक्तानि भली भांति विभाजित भवन्ति है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जम्बुद्वीप में 9 वर्ष खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 9,000 योजन और 72,000 मील है। इन खंडों की सीमा बताने वाले पर्वत हैं जो उन्हें भली भांति विलग करते हैं, विभाजित करते हैं। तात्पर्य इस श्लोक के टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने वायु पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिया है, जिसमें हिमालय पर्वत से प्रारंभ करके विभिन्न पर्वतों की स्थितियां दी गई हैं। धनुर्वती संस्थिते गेये द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे दीर्घाणि तत्र चत्वारि चतुर्श्रम इलावृतम इति दक्षिणोत्तरे भारतोत्तर कुरुवर्षे चत्वारि किम पुरुष हरिर हरिवर्ष रम्यक हिरण्मयानि वर्षाणि नील निषद्योम तिरश्चिनी भूय समुद्र प्रविष्टयो संलग्नत्वं अंगीकृत्य भद्राश्व केतु मालयो अपि धनुराकृतित्वं अतस्तयो दैर्घ्यत एव मध्य संकुचित तत्वेन 9,000 मत्वं इलावृतस्य तु मेरो सकाशात् चतुर्दिक्षु 9,000 मत्वं संभवेत् वस्तुतं त्व इलावृत भद्रास्व केतुमालानां चतुस्त्रिंशत् 9,000 गेयम्। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के अनेक प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में आप लोग जानते हैं 10 विषयों का वर्णन किया गया है और श्रीमद् भागवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण श्रीधर स्वामी ने वर्णन किया है और इस महापुराण के जो लक्षण होते हैं उसके 10 विषय हैं और पुराण का जो विषय है 5। तो श्रीमद् भागवत जो है ये महापुराण है, 17 पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसलिए करके 18 पुराण बताया गया है। पुराण का अर्थ होता है पुरैति इति पुराण, जो पूरा करे उसको पुराण कहते हैं। जिस सिद्धांत को, जिस वस्तु को अन्य शास्त्रों के द्वारा जो पूरा नहीं होता है उसको पुराण के द्वारा पूरा किया जाता है, पुराण उसको पूरा करता है पूर्ण रूप से, इसलिए उसको पुराण कहा जाता है। जो सिद्धांत, जो वस्तुएं उपनिषदों के द्वारा या श्रुति स्मृति के द्वारा पूरा नहीं होता है उसको पुराणों के द्वारा जो पूरा किया जाता है उसको पुराण कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराणों में तिलक है, शिरोमणि है, तो अत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषय कर्मंतरायसानु ईशानु मुक्ति आश्रय। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से द्वितीय स्कंध में श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन किया गया है इसका वर्णन 4 श्लोकों में उन्होंने किया है। 10वें अध्याय के 1 श्लोक में अत्र सर्ग विसर्गस्य, अत्र मतलब अस्मिन् श्रीमद् भागवते, इस श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में, प्रथम स्कंध श्रीमद् भागवत का ये भक्ति का अध्याय है या भागवत की भूमिका है और द्वितीय स्कंध में सर का वर्णन किया गया है। सर का अर्थ होता है जो भगवत सृष्टि है, भगवान के द्वारा जो पदार्थों की सृष्टि हुई है उसको सर कहते हैं, जैसे पंच महाभूत इत्यादि, पंच महाभूत और भूतेन्द्रिय और उसके जो विषय हैं रूप रस शब्द गंध स्पर्श इत्यादि और उस सात्विक तामसिक राजसी जो अहंकार है, इनके जो सृष्टि है इसको सर कहते हैं, दैव सृष्टि जिसको कहते हैं। तो इसका वर्णन द्वितीय स्कंध में सुखदेव गोस्वामी ने किया है और तृतीय स्कंध में विसर्ग का वर्णन है। सर का भी वर्णन है, विसर्ग का भी वर्णन है। विसर्ग उसको कहते हैं जो जीवों के द्वारा जो सृष्टि होती है उसको विसर्ग कहते हैं, अथवा जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्ट पदार्थ हैं उनको विसर्ग कहते हैं। तो इसका वर्णन तृतीय स्कंध चौथे स्कंध में है। और पांचवें स्कंध जो है अभी जो हम लोग कथा सुन रहे हैं इसको कहते हैं स्थान स्थिति स्थिति वैकुंठ विजय हो। इसमें स्थिति का वर्णन किया गया है, मतलब जो भूगोल है ब्रह्मांडों की जो उत्पत्ति है, खगोल है, भूगोल है, लोक लोकांतर का जो वर्णन किया गया है, ग्रह नक्षत्र तारे इन सब का, तो इसको कहते हैं स्थिति। और छठवां स्कंध पोषण, छठवां स्कंध में भगवान के द्वारा उनके जो भक्त हैं वित्रासुर महाराज या चित्रकेतु महाराज, ऐसे भक्तों का भगवान ने पोषण किया है तो इसको पोषण कहते हैं। और सातवां अध्याय स्कंध जो है उतय कर्म वासना, उति का वर्णन है। उति का अर्थ है कर्म वासना, जीवों को जो विभिन्न प्रकार के जो इच्छाएं हैं वासना है इसको उति कहते हैं। और श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंध में मन्वंतर का वर्णन किया गया है, मन्वंतर सत धर्मयो। मन्वंतर इसको कहते हैं मनु महाराज का जो शासन काल है, जो व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था जो है उसको कहते हैं सद्धर्म मन्वंतर। श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंध में 14 मन्वंतरों का वर्णन किया गया है। और नवम स्कंध में श्रीमद्भागवतम के नवम स्कंध में ईशानु कथा, इस कहते हैं भगवान को जो नियामक करते हैं, इसतु इस्ति जो शासन करते हैं कंट्रोल करते हैं उनको इस कहा जाता है। और ईशानु उनके जो अनु हैं, उनके जो भक्त हैं, उनकी कथा जिसमें वर्णन है उसको ईशानु कथा कहते हैं। यह नौम स्कंध में जो भगवान जो भक्त हैं अम्बरीश महाराज और बहुत से राजा हैं, राजाओं का जिसमें वर्णन किया गया है, नहुष महाराज, अम्बरीश महाराज अर्थात सूर्य वंश और सोम वंश का जिसमें वर्णन किया गया है, सोम वंश के राजाओं का, और जैसे महाराज पुरुलवा, नहुष, जयाति, इन महान राजाओं का चरित्र जिसमें वर्णन है, और अम्बरीश महाराज, खटवांग महाराज, रघु महाराज, जो सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है नवम स्कंध में, इसलिए इसको कहते हैं ईशानु कथा। और श्रीमद्भागवत के दसम स्कंध में आश्रय तत्व का वर्णन किया गया है, दसमस्य विशुद्धार्थ नवानाम यह लक्षणम। इन दसम स्कंध जो विशुद्ध जो आश्रय तत्व है, इस आश्रय तत्व का वर्णन करने के लिए इन 9 तत्वों का वर्णन किया गया है। तो आश्रय तत्व का वर्णन श्रीमद्भागवत के दसम स्कंध अर्थात 90 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी जी ने किया है। और निरोधो मुक्ति आश्रय, निरोध एकादश स्कंध और मुक्ति का द्वादश स्कंध में वर्णन किया गया है। निरोध का अर्थ होता है जब प्रकृति लय, भगवान जब इस विराट संसार को जब अपने अंदर समेटते हैं तो इसको निरोध कहते हैं। सांस भगवान छोड़ते हैं तो सृष्टि का विस्तार होता है, जब प्रलय होता है, प्रलय भी कई प्रकार के प्रलय है। जब प्रलय होता है, भगवान इस विश्व सृष्टि को अपने अंदर जब समेटते हैं, इसको निरोध कहते हैं। और मुक्ति, मुक्ति का अर्थ जन्म मरण से छूट जाना, ये वास्तविक मुक्ति का अर्थ नहीं है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित है। जो हमारे जो अन्य स्थिति है, मतलब हम अपने वास्तविक स्वरूप के अलावा जो अपने को भिन्न देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, और जो अन्य स्वरूप है, जो हम हैं नहीं वास्तविक, अन्यथा रूपम, जो हम नहीं है उसको मैं मानना, हम शरीर नहीं हैं, हम राजा नहीं हैं, हम इसको यीशु कहते हैं अन्यथा रूपम। हमारा जो स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जीव रस स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान के हम दास हैं, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जितने भी इसके अलावा उपाधियां हैं वो हमारा उस स्वरूप नहीं है, चाहे हम इंजीनियर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, या ये कोई भी उपाधियां हैं, डॉक्टर हों या राष्ट्रपति हों, कोई भी, ये जो उपाधियां हैं ये अन्यथा रूपम है। लेकिन हमारा वास्तविक रूप जो है, हम भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारा यही स्वरूपेण व्यवस्थित है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति जो भगवान है उनकी सेवा करना, यही हमारी जो है सच्चा उपाधि है। भगवान स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, दास हैं, तो उनके इंद्रियों को संतुष्ट करना या सेवा करना, यही हमारा स्वरूप है। हम भगवान के दास हैं, भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, इस वो कभी छूटने वाला नहीं है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, भक्ति का अर्थ होता है सेवा। तो भक्ति जो है श्रीमद् भागवतम में साध साधन संबंध अभिधेय प्रयोजन, इन तीन विशेष तत्वों का वर्णन किया गया है। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर के और द्वादश स्कंद तक केवल श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। क्योंकि जीव का जो वास्तविक संबंध है भगवान है, वही आश्रय तत्व है, उन्हीं के साथ जीव का संबंध है, इसका वर्णन किया गया है इस तरह से। और भागवत के ये 10 विषय हैं, महापुराण के 10 लक्षण हैं। तो यहां जो कथा अभी हम लोग सुन रहे हैं, पंचम स्कंद यह स्थान है। तो किस तरह से इसका वर्णन किया गया है सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय स्वरूप हैं गोलोक में बलराम जी, और फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह में संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि चार व्यूह जिसको कहते हैं, और फिर संकर्षण से तीन पुरुषावतार होता है जिसको महाविष्णु कहते हैं, विष्णु, महाविष्णु, कर्णोदक साई, गर्भोदक साई और क्षीरोदक साई। साई का अर्थ होता है सोना। भगवान का ये तीन पुरुषावतार है, इसको प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष कहते हैं, भगवान शयन करते हैं विष्णु रूप से कारण समुद्र में। तो कारण समुद्र में भगवान शयन करते हैं तो उस समय ये संसार में कुछ नहीं रहता है। भगवान स्वयं पुरुष रूप धारण करके, पुरुषावतार ले करके ग्रेडियंस जो महाभूत इत्यादि हैं उसको प्रकट करते हैं, ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उसमें शयन करते हैं, फिर ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। और द्वितीय पुरुष हैं गर्भोदक शायु विष्णु, वे गर्भ समुद्र में शयन करते हैं और देखते हैं कि ये तो खाली है। तो भगवान अपने शरीर से आधे ब्रह्मांड को जल से भरते हैं और उस जल में अनंत ब्रह्मांड तैरते हैं। जैसे समुद्र में गेंद गेंद तैरते हैं, वैसी तरह से ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड तैरते हैं उसमें। और तृतीय पुरुष हैं क्षीरोदक शायु विष्णु, जो भगवान सभी जीवों में परमात्मा रूप से निवास करते हैं, जिनके कारण से ये शरीर चलायमान होता है, चलता है, बोलता है, फिरता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि सब कुछ रचना करने के बाद भी सब हाथ पैर सारे इंद्रियां सब हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कोई चेतना नहीं आ रही थी। न दत्तिष्ठ तदा विरा, तृतीय स्कंध में वर्णन किया है कपिल भगवान, इसमें कोई चेतना नहीं आ रही, सब इंद्रियां पंच महाभूत सब प्रविष्ट हो गए। फिर जब विराट पुरुष जब भगवान प्रविष्ट हुए तब ये काज करने लगे। जैसे पंखा है, मशीन है, सब ग्रेडियंस उसमें है, लेकिन जब तक उसमें विद्युत संचालित नहीं किया जाए तब तक कार्य नहीं करता है। तो भगवान जब इसमें है तब ये सारी इंद्रियां काम कर रही है, भगवान छोड़ देते हैं तो सब यही रहे खत्म हो जाता है, न हिल सकता है, न कुछ कर सकता है, न देख सकता है, इंद्रियां देख नहीं सकते हैं, भगवान के कारण सब कुछ होता है। फिर गर्भोदक शायु विष्णु से ही भगवान के नाभिक से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल के फूल के ऊपर, डंठल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। भगवान उनको प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि बीज हैं, प्रथम पुरुष हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको एक मुख था, प्रकट होने के बाद वे चारों तरफ देखने लगे कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ है। तो चारों दिशाओं में मुख घुमाए तो इसलिए उनको चार मुख हो गया, चतुर्मुख हो गए। फिर उन्होंने तपस्या किया, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद तब भगवान उनको आकाशवाणी में कहे। पहले तो अपने जन्म का पता लगाने लगे, तो कमल का नाल पकड़ कर डंठल को बहुत जल में गए लेकिन उसका पता नहीं पा सके, तो विस्मित हो गए कि मेरा कहां से जन्म हो गया, मैं पता नहीं लगा। फिर ऊपर आ गए, इस तरह से तब भगवान ने उनको आकाशवाणी किया, तो और प दो शब्द सुनाई दिया जो व्यंजन है, स्वर व्यंजन, व्यंजन को क से लेकर के यार लस तलाबी सब मूर्धनी सब, तो ये इसको कहते हैं वर्ण व्यंजन। तो इसके 16वां अक्षर त और प पांच पांच होता है ना, क ख ग घ ग, तो पांच पांच पंद्रह, इसके बाद सोलह आएगा ना, तो आप ये दो शब्द सुना दिया। केवल नहीं कहे तप करो, भागवत में लिखा गया है कि वर्ण के सोलहवें अक्षर षोडश। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ब्रह्मा जी बुद्धिमान है, समझाना नहीं पड़ा उनको। आजकल तो एक बातों को समझाना पड़ता है फिर भी समझ में नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी समझदार थे, समझ गए कि भगवान का आदेश हो रहा है तप करने के लिए। तो बहुत समय तक तप किए, तब भगवान उनको चतुर्थ श्लोक की भागवत प्रदान किए। चार श्लोकों में जो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में चार श्लोकों में वर्णन किए, दसवें अध्याय में ही है आगे है। चार, और इसी को व्यास जी ने कितना श्लोकों में 18,000 विस्तार किया। लेकिन मूल भगवान ने चार श्लोकों में ब्रह्मा जी को प्रदान किया, फिर भगवान ने उनको सृष्टि करने का आदेश दिया कि तुम सृष्टि करो। तो भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 10 पुत्र उत्पन्न किए। सनक, सनंदन, सनातन चार कुमार हैं। तो इनको जब सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा तो वो लोग मना कर दे, नहीं हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी क्रोध को दबाए, अंदर समित किए, तो वह क्रोध आंख से प्रकट हो गया। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका दिखाई आंख पर पड़ता है, आंख लाल हो जाता है, आंख तर उलट कर देखने लगता है। तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, तो ब्रह्मा जी उसको दबाए तो वह आंख क्रोध से प्रकट हो गया। और वही क्रोध रूप में जो उनका क्रोध प्रकट हुआ, उस रूप में कौन प्रकट हो गए? भगवान शिव रूप। तो शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भौं से हुई है, आंख से। और जन्म लेते ही रोने लगे, तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र। तो कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र हैं। तो शिव जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद शिव जी ने कहा, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा ऐसा लड़का है जो पूछता है कि क्या करें। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे बेटा सृष्टि करो। तो शिव जी जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुरूप कार्य करता है। तो शिव जी अपने स्वभाव के अनुसार सृष्टि करने लगे, तमोगुणी जीवों का, सांप, बिच्छू इत्यादि जो भी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब विषैले जीव घूम रहे हैं, लगता है इसे भर जाएंगे पूरी सृष्टि। तो कहा बस बस अब तपस्या करो। तो फिर भी इसके बाद और जो ऋषि थे उन ऋषियों को पैदा किए, फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी चिंतित थे, तो उनके शरीर के दो भाग हो गए, जिसको काय कहते हैं। का मतलब होता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के दो शरीर हो गया, का या का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। इसलिए हम लोग को शरीर काय कहते हैं, शरीर काय के उपाधेय काया। तो उनके एक शरीर के एक भाग से महाराज मनु का जन्म हुआ, और जो द्वितीय जो भाग था उससे महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा जिनसे सृष्टि भय अनुप इसलिए हम लोग मानव कहलाए, मनु महाराज के हम लोग संतान हैं, इसलिए मानवी सृष्टि मनु महाराज से चालू हुई, इसलिए हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है, मानव मनुष्य कहलाते हैं हम लोग, मानवी सृष्टि। मनु महाराज ने शत्रुपा के गर्भ से 3 पुत्रियां उत्पन्न किए, आकुति, देहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्पन्न किए, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। उत्तानपाद का मनु महाराज की पुत्रियों को जो कथा है श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंध में है, और 4th स्कंध में महाराज उत्तानपाद की कथा है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव महाराज, बालक ध्रुव, इनकी कथा 4th स्कंध में है, और 4th स्कंध में ही मनु महाराज के भगवान शिव की कथा भी 4th स्कंध में है, सती का जो कथा है भगवान शिव और सती का, और 5वें स्कंध में जो हम सुन रहे हैं प्रियव्रत महाराज का चरित्र का वर्णन 5वें स्कंध में किया गया है। तो इस तरह से यह सृष्टि परंपरा है, मूल भगवान से चला हुआ है, लेकिन आजकल के जो दार्शनिक हैं इस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्यों की सृष्टि बंदर से हुई है। तो ये हमारी संस्कृति है, ये कहती है कि हम ऋषि के संतान हैं, भगवान के संतान हैं, हम ऋषि के हैं, लेकिन पश्चात देश कहते हैं कि हम बंदर के पुत्र हैं, हम बंदर से उत्पन्न हुए हैं। प्रभुपाद जी इस पर बहुत लेक्चर दिए हैं, वो सब वहां विदेशों में पूछते थे, प्रभुपाद जी कहते जब तुम बंदर के संतान हो तो आज भी एक बंदर से एक आदमी क्यों नहीं उत्पन्न होता है, होना चाहिए। तो हम लोग ऋषि के संतान हैं, हम लोगों का वंश कुल बहुत महान है, इन सबका वर्णन इस भागवतम में किया गया है, इसलिए हम लोगों का कुल गोत्र ऋषियों के अनुसार होता है, वशिष्ठ गोत्र, कश्यप गोत्र, अत्रि गोत्र, ये सब गोत्र है, लेकिन आज के जनरेशन में आने वाले बच्चे भूल गए। जब भी कोई शुभ संस्कार होता है तो पूछा जाता है कि आपका कुल गोत्र, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि अब हमारी संस्कृति नहीं रही, संस्कृति नष्ट हो गई है, होती जा रही है, पश्चात संस्कृति जो है हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दी है, और वर्तमान में आगे चल करके बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। तो हम लोग ऋषि के संतान हैं, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग ये स्मरण रखना चाहिए, ये परंपरा है। तो प्रियव्रत महाराज का चरित्र इस 5वें स्कंध में वर्णन किया गया है। प्रियव्रत महाराज भगवान के परम भक्त थे, उनका मन भगवान में लगा हुआ था, तो वे घर छोड़ करके जंगल में भक्ति करने के लिए चले गए। उनको वहां से नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया, नारद जी को उन्होंने गुरु बनाया, नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया। तो जिनके गुरु नारद हों वो साधारण भक्त नहीं हो सकते हैं, महान भक्त। तो नारद जी उनको ज्ञान दिए और ज्ञान दे रहे थे, उसके पहले मनु महाराज ने उनसे प्रार्थना किया, बेटा तुम सृष्टि करो। उन्होंने अपने पिता का बात नहीं माना और जंगल में जाकर भजन करने लगे। मनु महाराज चिंतित थे, फिर ब्रह्मा जी के पास गए। जब छोटे आदमी से मंत्री से काम नहीं होता है तो बड़े के पास जाया जाता है। तो इस ब्रह्मांड में सबसे हेड है, प्रधान है ब्रह्मा जी। इस ब्रह्मांड में जब शासन ठीक से नहीं चलता है तो सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, तो फिर ब्रह्मा जी कोई न कोई उपाय सोचते हैं। तो मनु महाराज जी ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी हंस पर चढ़ करके, और जहां प्रिय व्रत महाराज भजन कर रहे थे जंगल में, वहां गए तो वहां देखते हैं कि नारद जी भी हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, और मनु महाराज भी वहीं हैं, और इसके पीछे ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी ने प्रिय व्रत महाराज को समझाया कि आपके लिए, आप चाहे घर में रहिए चाहे गृहस्थी में, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं पूर्ण रूप से भगवान में तुम्हारी इंद्रियां लग गई है, इसलिए तुम कहीं भी रह करके इंद्रियों को संयम कर सकते हो, इसलिए तुम सृष्टि करो, विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल नहीं है और वो जंगल में भी रहता है तो उसकी इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आने से वो इंद्रियां विचलित हो जाते हैं, और जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है वो उसको चाहे घर में रहे बाहर उसकी इंद्रियां विचलित नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति की इंद्रियां वश में है नहीं है इसके जब विषय सामने आते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांच विषय हैं इंद्रियों के, इनके संसर्ग में आने पर यदि इंद्रियां चलायमान नहीं होती है तो वह इंद्रिय जय है। और जिसने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है तो इनके सामने आने पर विचलित नहीं होता है। जिस जनक महाराज जी को विदेह कहा जाता है, वो अपने इंद्रियों के राज में रहते हुए भी उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, राज में देह में कोई आसक्ति नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया तो ब्रह्मा जी के समझाने से प्रियव्रत महाराज समझ गए और आकर के विवाह किए। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत दिए हैं कि अपने से बड़े व्यक्ति के बात को बिना सोच विचार किए स्वीकार कर लेनी चाहिए, तर्क नहीं करनी चाहिए। प्रिय व्रत महाराज कोई तर्क नहीं किए, मनु महाराज ने कहा तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, लेकिन ब्रह्मा जी कहे समझाए तो समझ गए, उनके बात का उल्लंघन नहीं किए। इसलिए श्रद्धासु गुरु वाक्यसु, गुरु के वाक्यों में श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक चीते ते करिया एक आर न करिह मने आस। तो गुरु का अर्थ होता है जो अपने से जो बड़े हैं, गुरु का अर्थ केवल शिक्षा दीक्षा देने वाले ही नहीं होता है, मतलब अपने से जो बड़े हैं आयु में, विद्या में, कीर्ति में, वो सब गुरु हैं। गुरु मतलब भारी, जो भक्ति से ज्ञान से जो उम्र में बड़े हैं वो सब गुरु हैं। माता पिता से लेकर मतलब हमसे जो उम्र में बड़े हैं, इसलिए गुरु वैष्णवांश, जितने वैष्णव हैं सब गुरु हैं। हमसे आयु में उम्र में चाहे भक्ति में जो श्रेष्ठ हैं वे सभी गुरु हैं। और ऐसे गुरु जन्म के बात को बिना विचार के स्वीकार करने चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हित है। प्रियव्रत महाराज स्वीकार करके और विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किए और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न किए। 10 पुत्रों में 3 ब्रह्मचारी हो गए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, कवि, वसन और वित्तिहोत्र। ये 3 पुत्र ब्रह्मचारी हो गए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। ऊर्ध्वरेता कहते हैं जिसका जो रेत है, बीर्ज है, जो ऊपर उठे बढ़े, नीचे अधः नहीं ऊपर, उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। और जिनका बीर्ज नीचे गिरता है तो उनको ऊर्ध्वरेता नहीं कहते, तो मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। और 7 पुत्र, ये 10 पुत्रों का नाम जो अग्नि का 10 नाम है, इस पर प्रियव्रत जी ने अपने पुत्रों का नाम रखा। और उनसे 7 पुत्र हुए, 3 ब्रह्मचारी हो गए और 7 गृहस्थ हुए। इस तरह से जब भगवान सूर्य संसार में प्रकाश कर रहे थे इस लोक में, तो जब भगवान सूर्य अस्त होते थे तो आधा भाग अंधेरा में हो जाता था, अंधकार हो जाता था। तो प्रियव्रत महाराज को अच्छा नहीं लगा। तो प्रियव्रत महाराज अपने भक्ति के प्रताप के बल से, योग के बल से और अपने भक्ति के प्रभाव से इस संसार को प्रकाशमय कर दे, रथ पर सवार होकर इस पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा किए, जिससे 7 समुद्र हो गया। और उस 7 समुद्र वर्णन है, और 7 समुद्र को अपने 7 पुत्रों को बांट दिए, अधिपति बनाए, जिसमें नमक का समुद्र है, घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है और शुद्ध जल का समुद्र है और गन्ने का रस का। इस तरह से 7 समुद्र, इसको 7 खाई कहते हैं। और अपने 7 पुत्रों को विवाह कर दिए और उसकी सीमा निर्धारित किए, जो पर्वत हैं, नदी है, पहाड़ है, जंगल है, इनके द्वारा उनका सीमा निर्धारित किए। तो उनके पुत्र, प्रथम पुत्र जो है अग्निध्र महाराज, वे तपस्या करने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या से भंग करने के लिए, विरत करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा पुरुचित्ति को भेजा, क्योंकि वो बचपन में ही विरक्त हो गए थे, तो वो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं समझते थे, तो वे कैसे उनको विचलित कर सकते थे। तो अप्सरा को भेजे। स्वर्ग में बहुत सी अप्सराएं हैं, उर्वशी हैं, मेनका हैं, ये सब वहां की स्वर्ग की सबसे सुंदरी स्त्रियां हैं। तो उसके प्रभाव से उन्होंने पुरुषचित्ति में अपने हाव भाव से संग से उनको राजी कर लिया तो वहीं पर उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। उनके पुत्र हैं नाभि महाराज और नाभि के पुत्र हैं भगवान ऋषभदेव जिसको अजनाभ वर्ष कहा जाता है। उनके नाम पर इस देश का नाम अजनाभ वर्ष हुआ और ऋषभदेव के सब पुत्र हुए जिसमें 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए और 9 जोगेश्वर हो गए जिनकी कथा एकादश स्कंद में है महाराज जनक की सभा में और 10 राजा हुए जिनमें भरत महाराज सबसे बड़े थे। उस भरत महाराज के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। इसके पहले अजनाभ वर्ष इसका नाम था। भगवान ऋषभदेव का नाम है अजनाभ अज, तो जिसका हम लोग पहले सुने हैं भरत जी के वंश कथा और फिर उनके वंश का वर्णन किया गया है। अभी हम लोग सुन रहे थे भरत महाराज के वंश का वर्णन। उनके वंश में आगे चल करके गए महाराज हुए। इन्हीं कथा सुने इसके बाद सुनने के बाद परीक्षित प्रश्न किए हैं सुखदेव गोस्वामी से कि महाराज आपने अभी तक महाराज प्रिय भरत के वंश का वर्णन किया उसमें भरत महाराज के वंश का मैं श्रवण किया और इसके साथ ही आपने इस ब्रह्मांड के विषय में वर्णन किया खाई के वर्णन किया समुद्र का वर्णन किया पर्वतों का वर्णन किया विस्तार से वर्णन किया लेकिन आपने इस भूमंडल का जो द्वीप है उसका आपने संक्षेप में वर्णन किया इसलिए मैं विस्तार से इसका वर्णन सुनना चाहता हूं। तो उनके प्रश्न को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों को सुनकर के संतुष्ट होकर के फिर उन्होंने इस द्वीप का वर्णन चालू किया। तो अग्निदेव महाराज के एक पुत्र थे उनका नाम था जम्बुद्वीप। तो जम्बुद्वीप का वर्णन किए तो जम्बू के फिर जम्बुद्वीप किसको कहते हैं कि जामुन का वृक्ष और उसमें हाथी जैसे फल लगते हैं और पक करके जब फूटता है तो उसे नदी प्रवाहित होता है जम्बू नदी नद कहते हैं हरद जम्बू नद। जामुन के रस की नदी बहती है इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। जित द्वीप कहते हैं टापू को जैसे मायापुर में नवद्वीप में नवद्वीप है 9 आयरलैंड कोल द्वीप गुद्रुम द्वीप भद्र द्वीप रुद्र द्वीप अंतरद्वीप ये सब इसको द्वीप कहते थे टापू। तो जम्बू द्वीप है हम लोग जहाँ अभी वर्तमान में है हम लोग जम्बू द्वीप पर हैं। हम लोग टापू पर ही हैं टापू पर हम लोग जम्बू द्वीप इसलिए और बहुत बहुत द्वीप हैं। श्रीमद् भागवत के आगे आएगा हम लोग जम्बू द्वीप। तो महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुमने ऐसा प्रश्न किया ये तो इसका विस्तार से वर्णन किया जाए तो हम मन से बुद्धि से सोच कर भी इसका वर्णन करना चाहें तो उतना हमारी आयु नहीं है कि हम वर्णन कर सकें क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। इसलिए इसके पीछे वर्णन है कि मनसा वाचा हम मन से वाणी से भी इसका वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते। मन की गति कितना तेज है बहुत तेज है, उस गति से भी मैं वर्णन करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन बहुत चंचल है, बिजली के गति से भी मन की गति तेज है, बहुत तेज है, और उस गति से मैं वर्णन करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं, सक्षम नहीं, समर्थ नहीं हूं, फिर भी मैं वर्णन करता हूं। तो उनको सुनाया उन्हें विस्तार से। इस प्रकार से फिर उन्होंने ये पर्वतों का वर्णन किया, मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और फिर इसी प्रसंग में उन्होंने सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक का भी वर्णन किया। ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सुमेरु पर्वत के ऊपर है, ब्रह्मलोक। इसके बाद उन्होंने और लोकों का वर्णन किया, इंद्रलोक का, अमरावती जिसे कहते हैं, फिर वरुण लोक का वर्णन किया। इस तरह जो सात जो लोक हैं इसका ही वर्णन उन्होंने किया। फिर पर्वतों का वर्णन किया, बहुत पर्वत है, कूट पर्वत है, मेरु पर्वत है, द्रोणाचल पर्वत है, विंध्य पर्वत है, गिरिराज भी, इन सब का वर्णन किया। करने के बाद फिर ग्रह नक्षत्रों का वर्णन किया, सूर्य चंद्रमा तारे और जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र जानते हैं किसान लोग जानते हैं, नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र, अश्रेषा, माघा, पूसा, भाद्र, आश्विन, ये सब नक्षत्र हैं। और ग्रह हैं, नौ ग्रह प्रसिद्ध है, राहु, केतु, बृहस्पति, रवि, शुक्र, ये सब ग्रह हैं। इसलिए पूजा पाठ कराते समय पहले ही विघ्न के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है, ब्रह्मा जी पहले ही उनका ब्रह्म संहिता में किए हैं, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, यत पाद पल्लव जुगम विनिधाय कुंभ, द्वंदे प्रणाम समय सगणाधिराज, विघ्नान विहंतु मलनस्य जगत त्रयस्यम, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गणेश जी का इसलिए विघ्न विघ्नेश्वर हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत कार्य, भानु शशि रवि, शनि राहु केतु, सर्वे ग्रह संत, ऐसे श्लोक है, सभी ग्रहों की शांति करने के लिए। ये सब ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, और सूर्य और चंद्रमा इन ग्रहों के अधिपति हैं, वनस्पतियों के स्वामी हैं चंद्रमा हैं, वनस्पतियों के सूर्य और चंद्रमा ये न रहे तो हम लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। जो हमको फल खाने को मिलता है, सब्जी मिलती है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, इनके अभाव में हमको खाने को नहीं मिलेगा, इनके द्वारा पोषण होता है, ये औषधियों को पोषण करते हैं सूर्य और चंद्रमा। वर्षा होता है इसके बाद सूर्य और चंद्रमा पोषण करते हैं। भगवान सूर्य नहीं रहेंगे तो फसल पकेगा नहीं, तो इसलिए इसका ये वर्णन किए हैं इसी अध्याय में, पीछे श्लोक में, जो दो श्लोक पीछे रह गया एक श्लोक, इसमें उसका वर्णन है सूर्य और चंद्रमा का। तो सूर्य और चंद्रमा भी महान है, जिनके वंश में कौन भगवान आए, सोम वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, और सूर्य वंश में श्री राम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। इसलिए यह दोनों वंश जो है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, दोनों महान है, उसमें चंद्र वंश सबसे महान है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज से जब नौ संघ में सूर्य वंश का वर्णन किया तो उनका अथात सूर्यताम वंश सोमस्य पावनम, मैं तुमसे सोम वंश का पावन चरित्र वर्णन करने जा रहा हूं जिसमें बड़े बड़े राजा हुए, जिसमें अयल महाराज, पुरुरवा, जयाति, नहुष, ये लोग सोम वंश के राजा हैं। ऐसे महान राजाओं का चरित्र मैं वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए यह महान वंश है। और महान क्यों है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस वंश में आए। तो जो पृथ्वी जहां भगवान का प्रादुर्भाव होता है वह स्थान, वह देश, काल सब महान हो जाता है भगवान के संबंध से। इसलिए हम भगवान को जो कुछ समर्पण करते हैं तो भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, उस वस्तु की शोभा बढ़ जाती है। जैसे लोहा पारस का स्पर्श करता है सोना हो जाता है, उसका महिमा बढ़ गया। जो लोहे का भाव कम है तो सोना हो जाने पर कितना हो जाएगा, तो उस वस्तु की शोभा हो जाए बढ़ जाती है। सुंदरम भूषणम भूषणांगम, उस गहना की शोभा बढ़ जाती है। तो हम जहीं भगवान के संसर्ग में जाते हैं तो हमारी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए भक्त लोग जब कंठी धारण करते हैं, तिलक पहन करते हैं और वेशभूषा धोती कुर्ता पहनते हैं तो इनकी शोभा बढ़ जाती है। वैष्णवों का जो भूषण है, श्रृंगार है, ये कंठी है, तिलक है, झोली माला है। और स्त्रियों का श्रृंगार क्या है, ये गहना, सुंदर कपड़ा पहनना, ये सब श्रृंगार नहीं है। नारी नाम भूषणम लज्जा, चाणक्य पंडित ने कहा स्त्रियों के जो श्रृंगार क्या है, संकोच करना, लज्जित होना, लजाना, भोजपुरी में संकोच करना, अपने बड़े बूढ़े को देख करके संकुचित हो जाना, इसको कहते हैं नारी नाम भूषणम लज्जा। स्त्रियों का जो गहना है, श्रृंगार है, लज्जा है। लेकिन आजकल विपरीत हो रहा है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आजकल तो कोई पर्दा नहीं रह गया, जो जितना अपर्दा ही रहता है उसी को अपना अच्छा श्रृंगार मानते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति इसको श्रृंगार नहीं कहता है। जो अभी बताएगा ना, हमारा जो स्वरूप है क्या है, हम भगवान के दास हैं, तो दास को कैसे रहना चाहिए, कंठी, तिलक, झोली माला, जैसे पुलिस के आदमी वर्दी में रहते हैं, राइफल, अपना टोपी, उनका जो पोशाक होता है पहनते हैं, वैसे ही भगवान के जो दास हैं, भक्त हैं, उनका वर्दी क्या है, कंठी, माला और तिलक, और जीव से भगवान का हमेशा नाम। जो चार कुमार हैं तो हमेशा भगवान के नाम लेते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, इनके मुख से निकलता रहता है। तो ऐसे ही भक्तों का जो स्वभाव कैसा होना चाहिए, जीव पर भगवान का नाम, माथे पर तिलक, द्वादश तिलक शरीर पर, गले में तुलसी की कंठी और हाथ में माला और झोली, या ब्रह्मचारी के हाथ में भागवत। पहले के जो ब्रह्मचारी होते थे, हाथ में जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उसको हाथ में लेकर घूमते थे। जैसे आजकल के लड़के घूमते हैं, एक झोला चालू हुआ है नया, ऐसे पहले के विद्यार्थी के हाथ में भागवत, वेद, पुराण, इतिहास को लेकर घूमते थे। और उनके जीभ से केवल भगवान के वैदिक ग्रंथों का शब्द सुनाई देते थे, दूसरी बात नहीं करते थे, केवल भागवत का श्लोक बोलते थे, वेदों का श्लोक। इसी में कथयन्तिश्च माम नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी में रमण करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं इसी में रमण करते हैं, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के धाम, इसी को शिणवंति गायंति गृणंत भिक्षण सह स्मरंति नंदंती तवे हितम जना तएव पश्य तचिरेण तावकम भव प्रवाह प्रवाहो परमं पदाम भजम। तो भक्त क्या करते हैं, कथ्यंतः माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, और एक गीता में एक जगह है बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे से कहते हैं और सुनते हैं, ददाति प्रतिगृहणाति, देते भी हैं और लेते हैं, तो ज्ञान दिया भी जाता है और लिया भी जाता है, ऐसे ही भक्ति किया भी जाता है और कराया भी जाता है। तो भक्ति ध्यान रखना चाहिए, भक्ति जो है साध और साधन दोनों है, भक्ति साध भी है और साधन है। हम भक्ति साधन करते हैं तो हमको प्राप्त क्या करना है, भक्ति को, भक्ति के द्वारा भक्ति को प्राप्त करना है, दूसरा चीज नहीं, मुक्ति नहीं, क्योंकि भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो यह सेवा कैसे प्राप्त होता है, तो भक्ति के द्वारा। जैसे किसी को पीलिया रोग होता है जंडिस, तो मिश्री कड़वी लगती है खाने में, लेकिन उसकी औषधि भी मिश्री है, दूसरी औषधि नहीं है। मिश्री को आप खाएंगे तो धीरे धीरे वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भक्ति जो है साधन है, और साधन के द्वारा प्राप्त क्या करना है, भक्ति ही प्राप्त करना है, साध्य। साध कहते हैं जिसको प्राप्त करना है, जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है। तो लाइफ क्या है, प्रेमापमर्थो महान, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर लेना, यही हमारा अर्थ है, प्रयोजन है। परम अर्थ, कई अर्थ हैं, लेकिन परम अर्थ क्या है, जैसे चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है, कृष्ण प्रेम, प्रेमापमर्थो महान, यह परम पुरुषार्थ है। तो जीव का जो परम पुरुषार्थ है क्या है, भक्ति है, और भक्ति का अर्थ होता है सेवा। तो सेवा कैसे प्राप्त होगा, तो साधन करेंगे, साधन क्या है, भक्ति, भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही साधन है, इसी के द्वारा वह प्राप्त होगी, दूसरे साधन से नहीं। यह साधन 64 प्रकार के हैं। भक्ति गोस्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जी ने 64 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया है। 64 में 9 प्रधान है, जिसका वर्णन प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता से किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और इसमें भी 5 मुख्य है, जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी को बताया था, जब जगन्नाथ पुरुष उनको वृंदावन भेजा था, 5 ही करने के लिए उन्होंने कहा था, मूर्ति सेवा, मथुरा वास, इस तरह से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवान का जो नाम संकीर्तन है ये सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान का श्रवण करना, भागवत श्रवण। और सारे साधन कैसे होंगे, इसका एक उपाय है, भागवत सुनने से सब साधन चलते रहेंगे, इसलिए नित्यम भागवत सेवया, हम भागवत सुनेंगे तो श्रवण सबसे बड़ा साधन है। भगवान में मन लगाने के लिए, इंद्रियों को भगवान में लगाने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है, मन को लगाने के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, इनके सुनने से मन भगवान में पूर्ण रूप से लग जाता है, और इंद्रियां तो स्वभाव लग सकती है, मन नहीं लगता है। मन को भगवान में लगाने के लिए भगवान की जो लीला है, कथा है, इसको जब सुनते हैं तो मन लगता है। सुखदेव गोस्वामी का मन भगवान में नहीं था, आत्मा में रमण कर रहे थे, लेकिन जब भगवान के गुणों का, भगवान के कृपा, भगवान के सौंदर्य माधुर्य का जब महिमा का विश्रवण किए तो गृहित चेता राजर से, वो खुद परीक्षित महाराज से वर्णन कर रहे हैं कि हमारे जो चित गृहित हो गया, पकड़ लिया गया और मैं खींच करके फिरा करके श्रीमद भागवत का 18,000 श्लोक अध्ययन किया और उसी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अधित्वान द्वापराद, द्वापर के आदि में जो हमारे पिताजी ने द्वापरांत, द्वापर के अंत में जो श्रीमद भागवत की रचना किया और उसको मैं अध्ययन किया और उसी को जो अध्ययन किया हूं, मैं अपनी बात नहीं सुनाने जा रहा हूं, पूर्व जो सुनी हुई वस्तु है उसी को मैं सुनाने जा रहा हूं। तो यह श्रीमद भागवत की विशेषता है कि भागवत सुनने से मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाता है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। हरे कृष्ण।
जी से प्रभु जी का